शुभम हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से श्री श्री राधा दामोदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौर निताय के चरणों में बैठ के आज रविवार को शरद प्रेम और विश्वास और श्रद्धा के इस उत्सव में आप सबका स्वागत करते हैं और भगवद गीता यथारूप के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। तो जिसके पास सामग्री है भगवद गीता की तो ये श्लोक निकालिए। इस श्लोक का भाव ये है कि जो कुछ भी इस दुनिया में कोई कर रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे क्या चीज है जो उसको करा रही है, इसको जानने का, जो इसको जान लेता है वो असल में भगवान को जान लेता है। तो एक बहुत सरल सा साधन है कि खा तो सब रहे हैं, पी सब रहे हैं, चल सब रहे हैं, उठ सब रहे हैं, बोल सब रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने वाला बुद्धिमान है, और जो ये जान लेता है वो भगवान को जान लेता है। अब आपको आप ये तो जान लेते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये कौन आपको करा रहा है। तो ये बहुत सरल स्वभाव है। इस श्लोक के शब्दों को सुनिए, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानो पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मदभावम स अधिगच्छति। अब ये श्लोक में आखिरी शब्द को पहले ध्यान दीजिए, मदभावम स अधिगच्छति। स का मतलब वो जो इसको जान लेता है वो क्या प्राप्त करेगा, अधिगच्छति मतलब पहुंच जाएगा, उसको मिल जाएगा, वो प्राप्त कर लेगा क्या, मदभावम। अच्छा ये श्लोक कौन बोल रहा है, श्री कृष्ण। तो भगवान मद का अर्थ है कृष्ण, तो मद की जगह पे कृष्ण रखो, अब क्या हो गया, कृष्ण भावन अधिगच्छति, वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और ये संस्था का नाम क्या है, कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावना भावित कैसे हो जाएंगे, एकदम कृष्ण भावना भावित, मदभावम आगच्छत अधिगच्छति सब मदभावम अधिगच्छति, वो एकदम मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मतलब कृष्ण भावना भावित हो जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में आने का, और एकदम कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, कैसे, तब कहते हैं परम वेति। परम, परम का मतलब होता है भगवान, जैसे परम सत्य परमेश्वर, परम का मतलब परवेशन, वेति मतलब जानता है। जो भगवान को जानता है वो भगवान के भाव को प्राप्त कर लेता है, कृष्ण भावना को प्राप्त कर लेगा। बोला कैसे जाने, वो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब कहते हैं दृष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च। शब्द अनुपश्यति, एक होता है पश्यति का मतलब देखना, पश्यति देखना, अनु जब आगे आ जाएगा तो इसका मतलब पहले कोई और है उसके पीछे ये देखेगा, इसको बोलते हैं अनुगामी, किसी के पीछे जाना। जैसे एक होती है राधा, है उसके पीछे चलने वाले को बोलते हैं अनुराधा, एक है राम, उसके पीछे जो चलता है उसको कहते हैं रामानुज, राम अनुज, राम के पीछे चलने वाले को बोलते हैं रामानुज। लक्ष्मण, राम के पीछे कौन चलता है, लक्ष्मण, उसको बोलते हैं राम अनुज। तो जब अनु आएगा इसके मतलब इसके आगे कोई चीज है। अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति जब देखेगा, क्या देखेगा, न अन्य और कोई नहीं है, ना अन्य और कोई नहीं, गुणेभ्य कर्तारम, ये सब गुण कार्य करा रहे हैं, कौन कार्य करा रहा है, गुण, कौन से गुण, प्रकृति के तीन गुण, कौन से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। गुण कैसे काम कराते हैं, गुण तो प्रकृति के हैं, प्रकृति जड़ है, तो जड़ प्रकृति उसके गुण कैसे काम कराएंगे। तो एक ध्यान में ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो स्वभाव है वो तीनों गुणों से प्रभाव से बनता है, और हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। जो हमारा स्वभाव है, जैसा जिसका जैसा स्वभाव है, वो सारे के सारे स्वभाव तीनों गुणों के प्रभाव से बने हैं, एक जन्म में नहीं, कई जन्मों से। तो कुछ भी कोई करता है तो वो स्वभाव के कारण करता है, और स्वभाव गुण से बनते हैं। तो गुणों के अलावा और कोई कुछ कराने वाला नहीं है। और गुणे भी परम, और ये जो समझता है ये गुण परम के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डालते हैं, भगवान के ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं है। हम जो कुछ करते हैं अपने स्वभाव के कारण कर रहे हैं, हमारा स्वभाव है, हमसे कराता है। ऐसे पांचवें अध्याय भगवद गीता में आता है कि आत्मा न करता है न कराता है न किसी से कुछ कराने की दलाली करता है। आत्मा न करता है न कराता है न किसी के करने का कोई कारण बनता है, तो फिर कौन कराता है? बोला स्वभावस्थ प्रवर्तते, स्वभाव कराता है। स्वभाव बहुत, स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। स्वभाव का एक दूसरा शब्द, एक और शब्द जब वो नशे के नाम से लेते हैं तो कहते हैं आदत बन जाती है। स्वभाव कैसा है? जैसे आदत कोई बन जाती है किसी की, अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट। ये हैबिट बदलना बहुत मुश्किल है। वो अंग्रेजी में हैबिट लिखो, बोलो उसमें से एच निकाल लो तो बाकी क्या बचेगा? बिट, थोड़ा बच जाएगी। बी निकालो तो क्या बचेगा? इट, वो पड़ी रह गई। आई निकालो तो टी बचेगी, चाय का कप फिर भी बच जाएगा, और टी भी निकालो तो आई खड़ा होगा, मैं तो मैं जाएगा ही नहीं। तो ये जो मैं, हमारी आदत में जो मैं पड़ गया है, ये है माया। मैं मेरा, ये है माया, और ये बदलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कोई भक्त बनता है तो उसको सीधा कहते तू नहीं रह गया, अब तू रह गया दास, अब तू मैं नहीं रह गया, अब तुम्हारा नाम है दास और स्वामी तुम्हारा है श्री कृष्ण। तो असल में मैं की बीमारी जो है वो सब मुसीबत है। मैं करता हूं, मेरा ये है, ये जो मैं और मेरा है ये है माया। और ये स्वभाव हमारा कैसा है? हर एक चीज को पकड़ के रखते हैं, मेरा 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 मैं, बस इसके अलावा कुछ हमको आता नहीं। तो ये स्वभाव, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वो स्वभाव के वश होकर करते हैं। कितना स्वभाव का प्रभाव होता है। आप भक्त बन जाओ, प्रयास करो भक्त बनने का, फिर भी आपका स्वभाव आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। जप करते हुए आपको बताऊं, एक भक्त होगा ऐसे बिल्कुल सीधा जो होगा, वो चलते फिरते जप करेगा हरे विष्णु हरे विष्णु, क्योंकि सारी उम्र वो बस में गया है आया है कर्म किया है, तो उसका जप भी भागने वाला होगा, बैठने वाला नहीं होगा, बैठ के कर भी नहीं गा पाएगा, वो चलते हुए करेगा, एक शांति से बैठकर करेगा जप, लेकिन उसमें भी उसका स्वभाव प्रधान रहेगा। भिक्षा मांगने गया एक भक्त था, पहले सुनार का काम करता था, आया मंदिर साधु हो गया, माला पहना दी उसको, तिलक लगा दिया, हरे कृष्णा जपने लगाने में लगा, कहीं भिक्षा लेके भाई जाओ, तो किसी माता जी ने रोटी दी। अब वो जो सुनार का स्वभाव था ना, रोटी को ऐसे उठा के तोलता है, 25 ग्राम से ज्यादा तो नहीं होगी, फिर देखता है तो इसके अंदर आटे में मिलावट है। तो उसके दिमाग में जो वो स्वभाव घुसा हुआ है वो जाएगा ही नहीं। भक्त बनने के, चोर भक्त बन गया, चोरी करता था, साधुओं के साथ चला गया, साधु बोले चलो वृंदावन, चले गए वृंदावन, मथुरा में उतरे, रात को स्टेशन पे सो गए, चोर को रात को नींद आए नहीं, करे क्या, और चोरी नहीं करे तो उसके हाथ में खुजली हो रही है, अरे मैं साधु हो गया हूं हरे कृष्ण, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक साधु का थैला खोला, उसमें से लोटा निकाला, दूसरे साधु के थैले में डाल दिया, उसकी धोती निकाली दूसरे में डाल दी, और जब 5 बजे तो उसको नींद आई, वो सो गया, सब उठे, वो बोलता मेरी धोती कहां है, अरे मेरा लोटा कहां है, कौन ले गया कौन ले गया। तब इसको बोला अरे क्या कर रहा है, देखा नहीं का, बोला तेरा लोटा उसके थैले में, तेरी धोती उसके थैले में। बोला ये किसने किया? बोला मैंने किया। बोला ऐसे क्यों किया? बोला मैं चोर हूं, भक्त बन गया हूं, अब चोरी तो होती नहीं है लेकिन हेरा फेरी तो करूं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। बड़ा अच्छा भगत बन गया लेकिन फिर भी आदत नहीं जाई, क्योंकि स्वभाव इतना भारी होता है कि उसको बदलने के लिए अच्छा संग चाहिए, बहुत अच्छा संग चाहिए। जब तक अच्छा संग नहीं मिलेगा स्वभाव बदलेगा नहीं, और ये स्वभाव ही सब कुछ हमको करा रहा है। ये भगवान ने वहां साफ कहा है, तुम्हारा स्वभाव सब चीजों का जिम्मेवार है, जिम्मेदारी है। आत्मा कुछ करता नहीं है, कराता नहीं है, न किसी के कराने का हेतु बनता है, और न ही परमात्मा किसी के पाप पुण्य के जिम्मेवार हैं। नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञान तेतान महोयंती जनता। ये तो अज्ञान ने आपके ज्ञान को ढक दिया है, आपको दिखता नहीं है कि स्वभाव करा रहा है, आत्मा नहीं कर रही, परमात्मा पाप नहीं करा रहा है, न किसी के पुण्य का जिम्मेवार है, पाप करता है अज्ञान के कारण। तो क्या हो जाने से पाप खत्म हो जाएगा? ज्ञान हो जाने से। तो यहां कहते हैं अगर आपको ज्ञान हो गया, जान लिया मतलब ज्ञान हो गया, क्या जान लिया कि भगवान के ऊपर तो गुणों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तो हमारे ऊपर ही केवल पड़ता है, तो हम क्या करना चाहिए हमको, तो भगवान के पास में चले जाओ तो आपके पास तो आपको भी नहीं पड़ेगा। भाई जिसके ऊपर नहीं पड़ता है, जैसे बरसात है बाहर बहुत आ रही है और एक आदमी छाते के नीचे खड़ा है तो उसको तो पानी नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए? भाई उसके नीचे जाके खड़ा हो जाओ तुम भी, तो तुम्हारे को भी नहीं लगेगा। तो बहुत आसान सा काम है ना, बहुत सरल काम है कि जिसके ऊपर गुण प्रभाव डालते ही नहीं है उसके पास खड़े हो जाओ। भला उसके पास जाने का रास्ता क्या है? बोला जो उसके पास जाने के रास्ते को जानते हैं उनके साथ चले जाओ, जो उसके पास जाते रहते हैं उनके साथ चले जाओ, वो तुमको वहां लेके चले जाएंगे। तो वो कौन है जो भगवान को जानते हैं और भगवान के पास रहते हैं? निवर्त त्रिशयी उपगीय मानाय, जिनको संसार में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह गई है, केवल भगवान को पाना ही उनका मन का एक ही लक्ष्य है कि अब भगवान को पाना है, वो भगवान के पास ही बैठे हैं। कहां बैठे हैं? उपगीयते, गाते हैं। कहां बैठ के? भगवान के पास बैठ के भगवान का गुण गाते हैं। और सरल भाषा में आपको बोलो, किसके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है? गुणों का प्रभाव किसके ऊपर नहीं पड़ता है? जो गुणों का स्वामी है। कौन गुणों का स्वामी है? भगवान। तो हम अगर भगवान हमारे को सब गुण करा रहे हैं तो हम उसके पास चले जाएंगे तो हमारे ऊपर भी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अब आप लोग यहां आए हैं, ये भगवान का घर है, भगवान के ऊपर गुणों का प्रभाव पड़ता नहीं है, आप यहां आए तो आप भी गुणों से बचे हुए हैं। मंदिर में तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर के लिए 11वें स्कंद भागवत में लिखा है, निर्गुणाम हम निकेतनम, जो तीनों गुणों से बचना चाहे वो मेरे मंदिर में आ जाए, मेरे घर में आ जाए। तो ये मंदिर बनाए काहे के लिए? लोगों के स्वभाव को बदलने के लिए, लोगों को ये समझाने के लिए। देखो यहां आने से गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बाहर जाने से गुणों का प्रभाव पड़ता है। तो यहां जो संत बैठे हैं उनके संग में रहोगे तो मिलेगा क्या? सत्संग। और यहां जब आते हैं तो भक्त क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण जपो। क्या बोलते हैं? और हरे कृष्ण जपने से क्या हो जाता है? हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। और क्या कहते हैं यहां? क्या कहते नहीं है? भक्त कहते हैं हरे कृष्ण जपो, और आप क्या कहते हैं? प्रसाद कहां है? आप क्या पूछते हैं? प्रसाद कहां है? एक काम भक्त बोलते हैं हरे कृष्ण जपो, और आप बोलते हैं प्रसाद कहां है? तो हरे कृष्ण जपना और प्रसाद का पूछना, ये दोनों काम शुरू करने से भक्ति शुरू हो जाएगी। तो दोनों का इसमें दोनों का पूरा पूरा भागीदारी है। भक्त कहते हैं हरे कृष्ण जपो, और यात्री कहते हैं प्रसाद खिलाओ, तो दोनों की भागीदारी बराबर की। एक प्रसाद पाने का इच्छुक है और एक नाम जपवाने का इच्छुक है, तो दोनों को बराबर होना। आप सब लोग प्रसाद पाके जाएंगे ना कृपा करके? हाँ, तो फिर आपकी बात को हमने मान लिया, आपने हाँ कर दिया, तो आप हमारी बात को मान लो। हरे कृष्ण जपोगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागीदारी पक्की बराबर की होनी चाहिए ना। लेकिन मैं बताऊं आपकी भाई भागीदारी कैसी है। एक होटल में हम गए, वैसे खाते नहीं है, लेकिन उसने बोला शुद्ध वैष्णव हमारा भोजन आ लिया है, भक्त को भूख लगी हुई थी, बोला भाई कौन सी सब्जी है, तो बोला एक अंगूर और भोपले की सब्जी है। भोपला समझते हो ना, भोपला नहीं समझते, पंपकिन 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 अंग्रेजी में कहते हैं, और कद्दू एक। अरे भाई कैसी है, बोला 50-50 आधा आधा। ले आओ भाई अंगूर और पंपकिन की सब्जी है, कद्दू की सब्जी है, ले आओ। लाया तो केवल कद्दू अंगूर दिखे ही नहीं। अरे भाई तुमने बोला आधा आधा, बोला झूठ छोड़ी बोला, एक कद्दू एक अंगूर तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो हम कहते हैं प्रसाद खाओ, वो तो आपका भोपले वाला काम है, और जब हम कहते हरे कृष्ण जब, तब आप अंगूर बन जाते हैं। भागीदारी आपकी अच्छी है, लेकिन है भी 50-50 की, लेकिन आप अंगूर वाला काम करते हो। इसलिए भगवान को जानने में देर लग रही है। भगवान में देर नहीं है, आपके जानने के प्रयास में देर है। जितनी तीव्र इच्छा प्रसाद खाने के लिए होती है, उतनी तीव्र इच्छा हरे कृष्ण जपने के लिए हो जाए, तो भगवान को जानना बहुत सरल हो जाए। जितनी प्रसाद खाने की, जितनी भीड़ प्रसाद में लाइन में लगाते हो ना, धक्का मुक्की करते हो, उतनी माला के ऊपर धक्का मुक्की करो तो काम हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कुछ भी संसार में हो रहा है, उस सारे के पीछे गुण ही कारण है। गुणों से बने हुए स्वभाव के कारण मानव पाप भी कर रहा है या पुण्य भी कर रहा है। आत्मा नहीं करता है, परमात्मा नहीं कराते हैं। पाप कौन कराता है? रजोगुण। रजोगुण में कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामना पूरी नहीं होती है, क्रोध आता है, और ये काम और क्रोध पाप कराने का कारण है। तो करना क्या चाहिए? सत्वगुण में आना चाहिए। कम से कम सत्वगुण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तमोगुण से रजोगुण से बचना चाहिए। सत्वगुण वाला होगा, उसकी क्या इच्छा होगी? जानकारी प्राप्त करना, जानना चाहेगा। सतो संजायते ज्ञानम, सतोगुण के व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा होगी, जानने की इच्छा होगी। तो ये तो भगवान कह रहे तुम जान लो ना। क्या जान लो? कि मेरे ऊपर गुण प्रभाव नहीं डालते हैं, और बाकी सब गुणों के कारण ही सब कुछ कर रहे हैं। बोला इतना जानने से क्या होगा? बोला अगर तुम ये जान गए कि गुण मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डालते, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो आप कृष्ण भावना भावित हो जाओगे, मेरे भाव को प्राप्त करोगे। बोला ये कैसे जानेंगे? इसका मतलब भगवान को जान लेना है। भगवान के ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता है, ये जानने का मतलब भगवान को जान लेना। और भगवान को कैसे जाना जा सकता है? तब इसी अध्याय में आगे भगवान को अर्जुन पूछेगा कि आपको कैसे जाना जाए। अथवा तीनों गुणों से बचने का साधन क्या है? जाने को छोड़ो थोड़ी देर, तीनों गुणों के प्रभाव से बचने का साधन क्या है? अगर तीन गुण ही सब कुछ करा रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं उसका फल भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। भाई जो करेंगे उसका फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा भोगेंगे, लेकिन फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो सब कुछ गुण करा रहे हैं, तो गुणों से जान कैसे छुड़ाए? अच्छा गुण किसके हैं? प्रकृति के। गुण किसके हैं? बोले प्रकृति के। बोले प्रकृति से कैसे जान छुड़ानी है? भगवान ने बोला बहुत मुश्किल है। देवी एश गुणमयी माया दुर्दया, मेरी माया बहुत कठोर है, किसी को छोड़ती नहीं है। अरे भगवान कोई रास्ता है? तब भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये माम प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ते, मेरा शरण ले लो तो माया तुम्हारा नाम भी नहीं लेगी। अरे भगवान आपका शरण कहां से ले? हमने तो अभी संसार का शरण लिया हुआ है, माया के चेले हैं। कोई बात नहीं, तो जिन तीनों से गुणों से बचने का कोई साधन है क्या? आगे ये प्रश्न अर्जुन पूछेगा तो भगवान ने उत्तर क्या दिया? तीनों गुणों से और उनके प्रभाव से और उसके कारण उनसे होने वाले कर्मों से बचने का साधन एक है। क्या है? अब मेरे पीछे बोलिए, अविभिचारेण भक्ति योगेना सगुणान समतैतैताना ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अविभिचारणी अनन्य भक्ति का आश्रय ले लेता है वो तीनों गुणों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। ब्रह्म पद को प्राप्त करने का अर्थ है मुक्त हो जाना। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक जीव को जीव भूत बोलते हैं। जीव भूत वो है जिनके ऊपर माया के तीन गुणों का प्रभाव है, जिनको भूत लगा हुआ है। और दूसरे होते हैं ब्रह्मभूत, जो मुक्त होते हैं। तो ब्रह्मभूत मुक्त बनने का साधन क्या है? अनन्य भक्ति करना। और भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति मुझे जानते हैं। तो भक्ति से भगवान को जाना जाएगा और भक्ति से तीनों गुणों से परे चला जाएगा, बच जाएगा। और तो फिर हमारे को भगवान को जानना सरल हो जाएगा। और जैसे भगवान को जाना, भगवत भावना में स्थित हो गए। और भगवत भावना में स्थित हो गए, मम साधर्म्यम आगता, मेरे जैसा आपका धर्म हो जाएगा। भगवान कहते हैं जैसे मेरा धर्म है ऐसे आपका धर्म हो जाएगा। तो भगवान का कैसा धर्म है? सच्चिदानंद है, सदा आनंद में रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। तो आप भी सच्चिदानंद हो जाएंगे, अपने आप को सदा सुखी पाएंगे। तो अब करना क्या चाहिए? यहां इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया? इस श्लोक का अर्थ हो गया जब कोई ये अच्छी तरह से जान लेता है कि जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं उसके पीछे तीन गुण हैं, और ये जान लेता है भगवान जो तीनों गुणों से परे है वो असल में कृष्ण भावना भावित होता है। मैं दो चीजें जाननी है, पहले ये जाना है कि मैं जो कर रहा हूं गुणों के कारण कर रहा हूं, मेरा स्वभाव करा रहा है, और भगवान जो कर रहा है वो तीनों गुणों से परे। बहुत बड़ी बात है। असल में हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, भगवान गलत कर रहा है। हमारी समस्या ये है, हम समझे हम तो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहा है। उल्टा हमारी सोच है, उल्टी। हमको समझना चाहिए सब कुछ गलत हम कर रहे हैं, भगवान कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, हमारा भलाई कर रहा है। सोचना चाहिए ये, और हम सोचते हैं उल्टा कि हम तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, भगवान कोई फल नहीं दे रहा है। तो ये सोच बदलनी है असल में। सोच क्या करनी है कि जो त्रुटियां हैं मेरी है, जो अच्छाइयां ये भगवान का प्रसाद है। मेरे जीवन में जो भी सफलता है ये भगवान की कृपा है, और जो मेरे जीवन में जो दोष है उसका मैं जिम्मेवार हूं। अब भगवान दया करके इनसे मुक्त करो। तो भगवान क्या कहेंगे? जाओ मेरे भक्तों का संग करो, वो तुम्हारी सहायता करेंगे इससे मुक्त कराने के लिए। भगवान स्वयं हाथ नहीं डालेंगे, भेज देंगे, रेफर करेंगे, जाओ भक्तों के पास, जाओ भक्तों के पास, वो आपकी सहायता करेंगे। नारद को भी ऐसे कह दिया। नारद चला गया भगवान के पास, नारायण उनका गुरु है और नारायण की सेवा बद्री नारायण में नित्य करते हैं। नारद जी का सेवा का आश्रम है बद्री का आश्रम, वहां रहते हैं और नारायण की सेवा करते हैं। और वृंदावन में जब भक्ति देवी का दर्शन हुआ तो भक्ति देवी को कह दिया कि आपका मैं गांव गांव में प्रचार करूंगा, जन जन में प्रचार करूंगा, लेकिन भक्ति देवी के दो फल ज्ञान और वैराग दो बेटों को जगा ही नहीं पाया, हिला हिला के जगा नहीं पाया, वेद कान में सुना के जगा नहीं पाया, तो बड़ा चिंतित हो गया कि कर्म से नहीं उठे, ज्ञान से नहीं उठे, तो ज्ञान और कर्म तो बेकार है। चला गया बद्री का आश्रम नारायण के पास। हे गुरुदेव, अब भगवान मैं आपका भक्त हूं, मुझे बताओ मेरी समस्या का समाधान क्या है, मैंने भक्ति को वचन दिया है, अब कैसे सत्य हो। भगवान ने कहा भक्तों से तुम्हारा भला होगा। भगवान ने नहीं कहा कि मैं भला करूंगा, बोला भक्तों से भला होगा। ये भगवान ने कहा जाओ भक्तों के पास। अब बोला भक्त कहां ढूंढूं, उधर ही विशाला नगरी में बद्री विशाल में बाहर निकल के आए तो चार कुमार मिले जो बड़े भाई हैं नारद जी के। उन्होंने देख के कहा नारद आप तो इतने भले भानस हो कि आपको देख के लोग हंसते हैं, आज आपका ही रोने जैसा मुंह बना हुआ है, क्या बात है भाई, सबको खुश करने वाला खुद ही दुखी हो तो फिर कैसे भला होगा। बोला चिंता का कारण यह है कि मैं भक्ति को वचन देकर आया हूं, मैंने सारा वेद सुना दिया, हाथों से बहुत हिलाया उनके बच्चों को, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, तो हंसने लगे दोनों चारों कुमार हंसने लगे। बोला मां अरे नारद आपको सब मालूम है, फिर आपने भागवत क्यों नहीं सुनाया। तो नारद ने कहा भागवत में और वेद में अंतर क्या, जो भागवत सो वेद। हंसनकादि ऋषि कहते हैं हां आप ठीक कह रहे हो, ये जो आम का पेड़ होता है इस पूरे पेड़ के अंदर आम का रस होता है कि नहीं होता है, तो आम के पेड़ को काटो रस मिलेगा क्या, हां नहीं मिलेगा, रस उसी के अंदर होता है ना। आम का रस चाहिए तो क्या चाहिए, पका हुआ आम। बोला यही तो कह रहे हैं नारद जी, वेद है कल्प वृक्ष, उसमें रस है लेकिन मिलेगा नहीं, और भागवत है उसका पका हुआ फल, उसमें रस है वहां से मिलेगा। अच्छा आपको ये और सिद्धांत अच्छी तरह से समझ लो, भगवान नहीं देंगे भक्त के पास भेजेंगे। जितना पानी इस दुनिया में आपको कहीं से भी मिलता है वो कहां से आता है, हाँ समुद्र से। पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है, तीन चौथाई धरती के ऊपर पानी समुद्र है, है ना। अच्छा पानी समुद्र का कोई पी सकता है, खेती हो सकती है, इतना सारा पानी है किसी काम का नहीं है कि नहीं है, किसी काम का। अब उसी पानी से गर्मी की मौसम में सूर्य बादल बना लेता है, और बादल का पानी नीचे बरसता है तो कैसा हो जाता है, सब पी लेते हैं कि नहीं, सब खेती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पानी किसका है, बादल का, और पानी किसका है, समुद्र का, और दे कौन रहा है, बादल। ऐसे सब कृपा भगवान की है, लेकिन समुद्र की तरह भगवान अंगूठा दिखाते राम राम कुछ नहीं मिलेगा। बोला कैसे मिलेगा, बोला जिन्होंने तपस्या की है गर्मी में, जो तपस्या की है वो इसको मीठा बना के देंगे तब तुम्हारी प्यास बुझेगी। तो भगवान तो है समुद्र की तरह और भगवान के भक्त हैं बादल की तरह, वो जब देंगे तब आपका भला होगा। और बादल तो समुद्र के ऊपर भी बरसाते हैं पानी, जहां से लेते हैं उसी को देते हैं, तो क्या बेकार काम करते हैं क्या, समुद्र में बरसात के पानी पड़ने से कोई लाभ होगा क्या। अरे हां होता है, समुद्र का नाम समुद्र कैसे पड़ गया, स का मतलब साथ और मुद्रा का मतलब धन, जिसके पेट में धन पड़ा हो उसको कहते हैं समुद्र। दूसरा नाम है समुद्र का रत्नाकर, जिसके पेट में रत्न होते हैं, मोती होते हैं जिसके पेट में, समुद्र का दूसरा नाम है रत्नाकर। बरसात का पानी समुद्र में भी गिरता है तो कोई सिप्पी पीती है उसके पेट के अंदर मोती बनता है, खारे पानी से नहीं बनता है, बरसात के पानी से, रहती समुद्र में है लेकिन बरसात के पानी से वो उसके पेट में मोती बनता है। ऐसे भगवान के पास बैठे होने वाले को भी भगवान के भक्त की जरूरत है। भगवान के समुद्र में बैठा हुआ है उसको भी पानी चाहिए बरसात का, तभी मोती बनेगा, नहीं तो मोती नहीं बनेगा, नहीं तो मछली पैदा होगी। मछली समुद्र का पानी पी लेती है लेकिन वो नहीं पिएगी सिप्पी जिसके अंदर मोती बनता है। तो यहां इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्णा बोली, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। 19वां श्लोक पढ़ रहे थे जी, 14-19 है ना। श्री प्रभुपाद की पहला सिद्धांत है, अगर आपको भगवान को जानना है तो भगवान के प्यारे भक्तों के पास जाके सुनो। सीधा एक रास्ता, आपको भगवान को जानना है तो भगवान के भक्तों के पास जाके अच्छी तरह से सीखो। और जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सीख रहा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान की भगवत गीता को जो जानते हैं, जिन्होंने गुरुजनों के चरणों में बैठ के सीखा है, उनके पास जाके सीखो। और जैसे उनके पास जाके सीखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? समझ में ये आएगा, हम आत्मा हैं, हमारे को ये शरीर मिला है, ये तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मिला है तो इसका सदुपयोग कर ले। क्या करने के लिए? ये गाड़ी है, शरीर है गाड़ी, आत्मा है, मैं आत्मा हूं इसमें यात्री। तो गाड़ी किसके लिए खरीद की है? मंजिल पे जाने के लिए। तो मेरी मंजिल क्या है, गंतव्य स्थान क्या है, कहां जाना है, वो इस गाड़ी से वहां पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। ये शरीर खाने पीने के लिए नहीं है, भगवान को पाने के लिए। नर शरीर नारायण को पाने के लिए है, कुत्ते बिल्ले गधे का शरीर खाने पीने के लिए है, क्योंकि उन बिचारों को भोग यूनि है, केवल जो उनका सुख दुख है उनको भोगने पड़ते हैं। लेकिन मानव की भोग योनि नहीं है, कर्म योनि है, उसको अपना कर्म बदलने का अधिकार है। कर्मण ये अधिकारस्ते, तुम्हारे को कर्म करने का अधिकार है, केवल मानव को, वो भी पृथ्वी लोक में, वो भी भारत वर्ष में कर्म करने का अधिकार है, और देवलोक में भी कर्म करने का अधिकार नहीं है, और किसी लोक में कर्म करने का अधिकार नहीं है, और मानव के अलावा और किसी जोनी में कर्म करने का अधिकार नहीं। तो कौन सा कर्म करना चाहिए? सत्कर्म करना चाहिए, सत का मतलब भगवान, वो कर्म करना चाहिए। कम का कौन सा कर्म करना चाहिए? भगवान के वचन सुनो, मत कर्म, मेरे लिए काम करो, काम मेरे लिए करो। अरे किसी के लिए तो कर रहे हो ना, अरे सबको छोड़ो, मेरे लिए काम करो। अब आदमी आजकल काम करते हैं, किसी छोटे सेठ के लिए काम करते, बोल रहे इससे काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का नौकरी मिले तो अच्छा है। बोला क्यों? बोला रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलती है। भाई गवर्नमेंट की नौकरी का फायदा है ना, गवर्नमेंट बड़ी है, भाई कंपनी छोटी होती है तो छोटा तनख्वाह, छोटा फैसिलिटी, छोटी सुविधाएं, गवर्नमेंट बड़ी है तो बड़ी सुविधाएं। तो ऐसे कोई कहता सेवा करनी है तो गवर्नमेंट की बड़ी, वो ये गवर्नमेंट से भी बड़ी गवर्नमेंट भगवान की, उसकी सेवा करनी चाहिए ना। तो मरने के बाद भी पेंशन, यहां नहीं दूसरे लोक में भी पेंशन मिलेगी, उधर भी पेंशन चालू रहेगी। तो ऐसा काम, ऐसे नौकरी ऐसे की करना चाहिए जो नौकरी चलती रहे, उसमें से कभी निकाले ही नहीं। तो किसकी काम किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए काम करना चाहिए। और भगवान कौन सा काम पसंद करते हैं? क्या काम भगवान के लिए करते हैं? बोला कुछ मत करो, केवल बैठ के दो बातें भगवान को पसंद है, एक यज्ञ एक तपस्या। भोक्तारम यज्ञ तपस्या, हम यज्ञ और तपस्या भगवान को चाहिए। आपको काम करना है तो पहले यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ करो? तो बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये जप यज्ञ है। माला उठा के करेंगे तो जप यज्ञ है, साथ बैठ के गाएंगे तो कीर्तन यज्ञ है। भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है, ये काम भगवान के लिए करो। लाभ किसको होगा? आपको। काम भगवान के लिए, लाभ आपको। क्या होगा? हृदय शुद्ध हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। दूसरा, भगवान को कौन सा काम अच्छा लगता है? तप। तप का मतलब तपस्या करना। जैसे आप गर्मी में यहां तक चल के आए हो, एक घंटा बैठ के हरि कथा सुन रहे हो, ये तपस्या। रोज भगवान की कथा सुनना तपस्या भी है, श्रवण भी है। ये भक्ति, भक्ति का मुख्य अंग है। वैसे इस सृष्टि शुरू ही तपस्या से हुई। ब्रह्मा जी कुछ नहीं देखा तो केवल दो शब्द सुने, तप तप तप। और भगवान इस पृथ्वी के ऊपर भारतवर्ष में नर नारायण तपस्या की मूर्तियां आज भी तपस्या कर रहे हैं। और भारतवर्ष के लिए ऋषभदेव ने कहा है, हे भारतवासियों, तपस्या करो, तपो दिव्यम पुत्र का। हे मेरे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो, अनंत आनंद को प्राप्त करो। तुच्छ शुकर कुकर की जूनी में मिलने वाले इंद्रियों सुख के पीछे मत भागो। ये तो तुम्हारी प्रकृति के स्वभाव तुमसे इंद्रियों के छोटे सुख के पीछे भगवा रहा है। इसको छोड़ के ब्रह्म अनंत सुख के लिए थोड़ी तपस्या कर लो। दिव्य तपो दिव्यम पुत्र का, ये भारत महाराज को कहा, जिसके नाम से भारत वर्ष है। तो ये शिक्षा पूरे भारत वर्ष के लिए। तो तपस्या और यज्ञ भगवान को बहुत प्रिय है। जप यज्ञ सब कर सकते हो, एक माला सबके पास होनी चाहिए और रोज जप करने का नियम बनाना चाहिए, तो अपने आप को स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। जिन भक्तों ने यह काम किया है, नशा छूट गया, सुबह बदल गया कि नहीं बदल गया? बचपन से एक आदत पड़ी हुई थी, वो छूट गई, प्रयास करने से नहीं गई लेकिन छूट गई। भक्तों को इस जप करने से बहुत सी बुरी आदतें अपने आप छूट गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जप में गड़बड़ कर दिया तो एक नया नशा भक्तों को आजकल पड़ गया। कौन सा? मोबाइल का। इसके ऊपर घंटों बैठे होते हैं अभी। ये इतना पेटू है, इसने सब कुछ खाया। ये घड़ी को खा गया, टार्च को खा गया, कैमरा को खा गया, ये किताबों की लाइब्रेरी को खा गया। ये क्या क्या नहीं है जो इसने नहीं खाया। इतने सारे काम खत्म हो गए। अब कोई घड़ी हाथ में बांधता नहीं है, कोई टार्च उठाता नहीं है, कोई कैमरा नहीं रखता है, कीमती रखता, वो भी खत्म हो गई। किताब सब, ये लाइब्रेरी की लाइब्रेरी खा गया। ये क्या क्या नहीं खा गया, फिर भी इसका नाम स्मार्ट है, इतना होशियार है। ये स्मार्ट है, ये नशा वापस सबको लग रहा है। इसके लिए इसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। तो ज्योतिषी के पास माता जी आई कि घर में बहुत शांति नहीं है, कोई व्रत बताओ महाराज। तो पहले महाराज शनि बुध का व्रत बताते थे, लेकिन अब महाराज समझ गए। बोला, बेटी अब एक ध्यान रखना, शनिवार के दिन व्हाट्सएप का व्रत रखा करो और आतवार के दिन फेसबुक का, तुम्हारे घर में शांति रहेगी। ये दो बड़े भारी व्रत है, ये बड़ी तपस्या है। इसलिए इस बिचारे को थोड़ा दूर रख दिया करो। जब आपको काम हो तो किसी को फोन कर लिया करो, दूसरा आपको ढूंढ के निकाले उसकी जरूरत नहीं है। और एक घंटा सुबह, बोला आधा घंटा सुबह इसको एक बार देखना है, उसके बाद शाम को देखेंगे। शास्त्र नहीं पढ़ना है तो हाथ नहीं लगाना है, नेम कुछ बना लो, नहीं तो ये नया नशा ऐसा आ रहा है, वो जप तप सबको गप बना देता है, कुछ काम का नहीं। ये बहुत बड़ा खतरा अभी चालू हो गया है, असल में बहुत बड़ा परेशान हो गया कलयुग। बोला ये हरे कृष्णा वालों ने जहां देखो माला उठा के और मृदंग और खड़ताल, हरे कृष्णा मेरा ग्राहक सब ले जा रहे हैं, मैं क्या करूं। कलयुग ढूंढ ढूंढ के जापान में पहुंचा, पहले नोकिया वाली कंपनी में जाके उसने कहा, एक इतना छोटा डबिया बना के दो, सबकी जेब में डाल दो, ये मूर्ख भगवान को भूल जाएंगे, वो एक फोन आ गया, बोला ये सो इससे काम नहीं बनेगा, फिर तो स्मार्ट, फिर ये, फिर अब इतने फोनों का मार्केट आ गई है कि कलयुग अभी हंस रहा है रोज, बोला कोई चिंता नहीं, भले कितना भी मंदिर में जाए लेकिन मैं इसके जेब में जाऊंगा। ये समझता है कि मैंने जेब में रखा है लेकिन मैंने इसको मुट्ठी में रखा है। तो ये असल में ये एक कलयुग का नया आविष्कार है, और इस एक आविष्कार की वजह से कलयुग के यमराज के वहां मीटिंग बड़ी हो गई कि अब जब से फोन आया है लोग इतना झूठ बोलते हैं, अब एक स्मार्टफोन नर्क बनाए, नया लेटेस्ट जो नर्क एक इन्वेंशन ऊपर हुई है, क्योंकि आदमी घर में सोया होता है फोन में बोलता है ऑफिस में हूं, ऑफिस में होता नहीं है, घर में सोया होता है बोलता है ऑफिस में हूं, और इतना झूठ बोलता है फोन के ऊपर सुबह से शाम तक। तो अब इसके लिए जब से ये कलयुग ने यहां क्या ऊपर में भी नया नया डिपार्टमेंट खुल रहे। तो ये कलयुग बहुत भारी युग है, तो इसलिए नियंत्रण थोड़ा जीवन में होना चाहिए। भगवान के भक्तों से ये सीखने को मिलेगा, अगर भगवान के भक्तों का संग नहीं है तो जैसा शरीर मिलेगा वैसे काम करना पड़ेगा, जैसा शरीर वैसा काम, गधे